नमस्कार।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक पर बात करने वाले हैं।
जी।
पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी की हमारे वसीयत और विरासत।
हाँ, और उसमें भी एक विशेष अध्याय।
बिल्कुल। अध्याय का नाम है विनाश नहीं सृजन, हमारा भविष्य कथन। इसमें गुरुदेव ने भविष्य को लेकर एक बहुत ही अलग बात कही है।
हाँ, मतलब जहाँ कई सारे स्रोत, चाहे वो धार्मिक हो या भविष्यवक्ता, वो एक संकट की तरफ इशारा कर रहे थे।
जी।
वहीं पूज्य गुरुदेव का कहना था कि नहीं, अंततः सृजन होगा।
तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गुरुदेव के इस आशावाद का आधार क्या था, क्यों वो इतने निश्चित थे।
बिल्कुल, चलिए इसी पर बात करते हैं। अध्याय की शुरुआत में ही ये विरोधाभास दिखता है।
कैसा विरोधाभास?
जैसे कि एक तरफ तो वो उल्लेख करते हैं कई ग्रंथ, बाइबल है, इस्लाम के संदर्भ है, पुराण है, गुरु ग्रंथ साहिब भी।
हाँ, और भविष्यवक्ता भी तो हैं।
जी, जीन डिक्शन, नास्त्रेदमस, कीरो और भी कई, ये सब किसी न किसी रूप में एक भयानक समय की बात कर रहे थे,
एक बड़े संकट की आहट।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ पूज्य गुरुदेव हैं, वो कहते हैं नहीं, परिणाम विनाश नहीं होगा
बल्कि सृजन होगा।
सृजन होगा, नव निर्माण होगा।
तो सवाल उठता है कि जब इतने सारे संकट विनाश की ओर थे तो गुरुदेव ये कैसे कह रहे थे।
और बात सिर्फ इन भविष्यवाणियों की नहीं है, गुरुदेव उन कारणों को भी मानते थे जो हमें आपको भी दिखते हैं, मतलब जो संकट ला सकते हैं।
हाँ, वो कौन से कारण?
जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या।
ये तो आज भी एक मुद्दा है,
बहुत बड़ा मुद्दा है।
प्रदूषण, जो औद्योगिकरण की वजह से फैल रहा था।
जी।
धरती के संसाधन कम हो रहे हैं, खासकर तेल, कोयला।
हाँ, ऊर्जा संकट की बात।
अणु युद्ध का खतरा, वो भी उस समय बहुत महसूस होता था।
और जलवायु परिवर्तन भी।
सही कहा, ये सारी चिंताएं तो वास्तविक थी और आज भी हैं, शायद और भी गंभीर रूप में।
तो फिर अगर वो इन संकटों को मान रहे थे तो फिर सृजन की बात कैसे? यहीं पर पूज्य गुरुदेव का चिंतन एक अलग स्तर पर जाता है। वो कहते हैं कि हाँ, ये संकट है, लेकिन इन्हें टालने के लिए या इनकी दिशा बदलने के लिए सूक्ष्म जगत में काम हो रहा है।
सूक्ष्म जगत?
जी। वो कहते हैं कि ऋषि सत्ताएं सक्रिय हैं, मतलब वो उच्च चेतनाएं, सिद्ध आत्माएं, जो अपने तप बल से लोक मंगल के लिए काम कर रही हैं।
अच्छा, यानी ये कोई बाहरी मदद, कोई दैवीय हस्तक्षेप जैसा है।
गुरुदेव ने खुद को भी तो एक माध्यम बताया है, जैसे हनुमान या अर्जुन का गांडीव।
हाँ, वो दैवी इच्छा और इन ऋषि सत्ताओं के पराक्रम को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि ये होकर रहेगा, लेकिन
वो सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं है।
तो फिर और क्या है?
वो जागरूक लोकमत की शक्ति पर भी उतना ही जोर देते हैं, मतलब हम सब आम लोग, हमारी चेतना, हमारा संगठित प्रयास।
यानी लोगों का बदलना भी जरूरी है।
बिल्कुल। उनका जो प्रज्ञा आंदोलन था वो इसी लोकमत को जगाने का प्रयास था, ताकि लोग, खासकर जो प्रभावशाली हैं, वो विनाश की जगह विकास पर ध्यान दें।
समझ गया। तो समाधान सिर्फ ऊपर से नहीं, नीचे से भी आएगा, देवी शक्ति और मानवीय शक्ति दोनों मिलकर।
हाँ, आप कह सकते हैं वो शस्त्र बल और धन बल को दानवी शक्ति कहते हैं,
और बुद्धि बल और संगठन बल को
उसे देवी शक्ति मानते हैं। उनका विश्वास था कि जब लोगों की प्रतिभा, उनकी बुद्धि सही दिशा में लगेगी, संगठित होगी, तो चमत्कार होंगे।
इसके लिए क्या करना होगा?
इसके लिए वो भारतीय मूल्यों की बात करते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु,
यानी सबको अपने जैसा समझना।
जी। और वसुधैव कुटुम्बकम,
सारी धरती एक परिवार है।
बिल्कुल। जब ये भाव आएंगे तभी वो संगठित देवी शक्ति काम करेगी।
तो अंत में इन सब विश्लेषण के बाद उनका निष्कर्ष क्या है, भविष्य कैसा देखते हैं वो?
उनका निष्कर्ष बहुत ही साफ और आशा से भरा है। वो लिखते हैं कि ये जो विनाश के बादल हैं, ये छट जाएंगे, इन्हें एक तूफान उड़ा ले जाएगा।
और
फिर अंधेरा चीर कर प्रकाश आएगा, एक नया वातावरण बनेगा। वो एक ऐसे भविष्य की बात करते हैं जहाँ शायद एक विश्व हो, एक भाषा, एक संस्कृति,
विषमताओं का अंत हो।
हाँ, सबसे जरूरी, जाति, धन, लिंग के भेद खत्म हो।
वो कहते हैं कि असुरता जीतेगी नहीं, परिवर्तन होकर रहेगा, और इसमें ऋषि सत्ताओं का पराक्रम मुख्य होगा।
तो कुल मिलाकर जहाँ दुनिया भर के संकेत निराशाजनक थे, पूज्य गुरुदेव का भविष्य कथन उम्मीद और नए सृजन का था।
जी, उनका मानना था कि नकारात्मकता को सकारात्मकता से पलटा जा सकता है, जैसे किसी उल्टी चीज को सीधा कर देना।
ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या इतने संकटों के बीच सकारात्मक बदलाव की इतनी पक्की बात का आधार सिर्फ आध्यात्मिक विश्वास था,
या फिर इसमें मनुष्य की अपनी क्षमता, उसकी जागी हुई चेतना और उसके संगठित प्रयासों पर भी गहरा भरोसा छिपा था।
ये सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं।
जरूर।
कि आज के समय में इन संकटों के बीच सृजन की ये संभावना कितनी वास्तविक लगती है और इसमें हमारी यानी व्यक्ति और समाज की क्या भूमिका हो सकती है,
इस पर विचार करना चाहिए।